मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस के इस दौर में हम सबको क्या क्या उपाय करने चाहिए। और ये जो उपाय हैं, ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें हम अपने बहुत ही घरेलू स्तर पर कर सकते हैं, बिना किसी दूसरे के सहयोग के कर सकते हैं और बिना बहुत अधिक धन लगाए कर सकते हैं। दरअसल जिन उपायों के बारे में मैं आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूं, इन्हें आप एक प्रकार के रोकथाम करने वाले उपाय मान करके चलें। यानी कि यदि हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, यानी कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि जब वायरस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे शरीर में इतनी ताकत होगी कि हम उसे हरा सकें। देखिए, सच पूछिए तो यह जो लड़ाई है, यह जो युद्ध है, या कह लीजिए जो महायुद्ध है, ये बेसिकली वायरस और मनुष्य जाति के बीच ही है। बीच बीच में आप सुनते होंगे म्यूटेंट म्यूटेंट, यानी कि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। अगर हम इसे बहुत ही सरल सहज शब्दावली में समझना चाहें तो और कुछ नहीं है, वायरस आता है, मनुष्य से लड़ता है। जब मनुष्य से लड़ता है तो मनुष्य भी अपने आप को तैयार करता है। आप देखते हैं हर्ड इम्यूनिटी, हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसको सहन करने की हम ताकत बढ़ा लेते हैं या हम वैक्सीन क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम भी अपनी ताकत बढ़ाते हैं। जब हमारी ताकत बढ़ जाती है तो वायरस सोचता है कि अरे, ये तो इनकी ताकत बढ़ गई है तो मैं भी अपनी ताकत बढ़ाऊं, क्योंकि यहां तो युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध चलने में दोनों अपनी अपनी ताकतों को बढ़ा रहे हैं। तो वायरस अपना रूप बदल देता है और अधिक ताकतवर होकर के आता है। इसीलिए आप अखबारों में सुन रहे होंगे कि जो पहली लहर थी उसकी तुलना में यह दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस मायने में नहीं कि बहुत ज्यादा डेथ रेट हो रही है, हम काफी कुछ संभाल ले रहे हैं। दो मायने में खतरनाक है। पहला तो ये बहुत तेजी के साथ ये फैल रहा है, इस मायने में खतरनाक है। और दूसरा ये है कि एक बार हो जाने के बाद लंग्स तक पहुंचने की इसकी स्पीड पहले की तुलना में ज्यादा है। पहले जो वायरस था वो लंग्स तक उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाता था, और पहुंचता भी था तो थोड़ा सा वक्त लेता था, तो हम फिर सर्वाइव कर जाते थे। इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये लंग्स को बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये वायरस दुगनी ताकत के साथ हमारे सामने आ गया है, और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तीसरी लहर भी आ सकती है। और तीसरी लहर में हो सकता है कि ये अभी जिस ताकत के साथ हमारे सामने आया है उससे भी अधिक ताकत से आए। तो इसीलिए अब हमारे पास यही एकमात्र उपाय बचता है कि कैसे हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली लगातार बनाते चले जाएं। इसलिए दोस्तों, अभी मैं जिन छोटे छोटे उपायों के बारे में बात करने जा रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि अरे अभी शुरू करेंगे तो अभी तो वायरस फैला हुआ है, इतनी जल्दी सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। नहीं, आपको शुरू कर देना चाहिए, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और देखिए कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम तीसरी लहर से भी इनकार नहीं कर सकते, तो कम से कम तब तक तो हम अपने आप को अच्छी तरह से शक्तिशाली बना लें। और ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही छोटे छोटे उपाय। और सच पूछे तो ये कोई मेरे द्वारा खोजे गए उपाय नहीं है, मुझे जो विशेषज्ञों ने बनाए हैं, जो भी मैं भी आप लोगों की तरह जो कुछ भी पढ़ता लिखता रहता हूं उनमें जिस पर विश्वास होता है, जिन्हें हम लोग कुछ कर भी रहे हैं और उनके रिजल्ट भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो यकीन हो जाता है कि नहीं नहीं ये उपाय ठीक है, इन्हें किया जाना चाहिए। तो वही बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आप सबको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे उपाय। पहली बात तो यह है कि ये कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सके हम नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू का मतलब हुआ विटामिन सी। गर्मी के दिन हैं, नींबू आसानी से नहीं मिल रहे हैं, तो विटामिन सी की टैबलेट आती है। विटामिन सी की टैबलेट ज्यादातर 500 mg की होती हैं। अगर 500 mg की हैं तो आप दो वक्त में विटामिन सी ले सकते हैं, एक बार सुबह ले लीजिए या दोपहर खाना खाने के बाद ले लीजिए, एक बार रात को खाना खाने के बाद ले लीजिए। तो इस तरह से 1000 mg हमारे शरीर में पहुंच जाती है और ये प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, नींबू या फिर विटामिन सी। और अगर आपको नींबू मिल रहे हो तो आप नींबू ले सकते हैं, लेकिन विटामिन सी जरूर लीजिए, क्योंकि हम इतने नींबू का उपयोग कर ही नहीं सकते कि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, है ना। तो दोनों भी आप लेकर के चले, ऐसा मना समझें कि नींबू चूंकि हम यूज कर रहे हैं तो विटामिन सी ना लें, विटामिन सी की टैबलेट आप लें, ये बहुत मदद करेगी। इसी तरह से है दोस्तों हल्दी। हल्दी के भी दो रूप हमारे सामने मौजूद हैं। एक है कच्ची हल्दी, नो डाउट कि हम सब दाल में डाल करके हल्दी का यूज करते ही हैं, सब्जियों में भी हल्दियां डलती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि चूंकि अभी चुनौती ज्यादा बड़ी है तो रात में या किसी भी समय जब आप दूध लेते हैं, और रात का समय अगर चुन सके तो बहुत अच्छा है, एक ग्लास या एक कप दूध में एक चम्मच हल्दी डाल लें, कच्ची हल्दी, उसे घोल लें और फिर पी जाएं, कुनकुना दूध हो और फिर आप उसे पी जाएं। हल्दी भी बहुत जबरदस्त किस्म की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, और आपको ध्यान होगा कि हल्दी को लेकर के तो इसके कॉपीराइट को बड़ा संकट मचा था अमेरिका की, शायद किसी कंपनी ने कह दिया था कि नहीं नहीं ये तो हमारा उत्पाद है, और इस तरीके से करके फिर भारत सरकार ने उसका विरोध किया था, तो फिर कम से कम वो हमारे पास वापस आया। हल्दी इतनी बड़ी औषधीय गुण वाली वस्तु है। दोस्तों फिर विटामिन डी की बात आती है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बातें हो रही हैं उसमें कह रहे हैं कि अगर हम दोपहर में 11 बजे से 2 बजे के बीच, इस समय है 11 बजे से 2 बजे के बीच अगर 20 मिनट की धूप ले लें तो इससे हमारे शरीर में विटामिन डी, एक जो नेचुरल विटामिन डी है, वह पहुंच जाता है। 11 बजे से 2 बजे के बीच 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट तक टहल सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी गर्मी के दिन हैं, लू भी चलनी शुरू हो गई है, तो खासकर इस बात का ध्यान रखें कि अगर लू चल रही है तो वो लू आपको ना लगने पाए, क्योंकि लू लगने का मतलब है फीवर आना, और फीवर आने का मतलब है कि हम तुरंत ये समझ लेते हैं कि अरे कहीं कोरोना तो नहीं है, और फिर एक तरह से संकट का दौर शुरू हो जाता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इस बार के कोरोना में बार बार डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर को जितना भी रख सकते हो खुला रखें, खिड़कियां खुली रखें, ताकि हवा का आदान प्रदान बिल्कुल निर्बाध रूप से होता रहे, जिसे हम कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। अगर आपकी आदत खिड़की बंद रखने की है तो अभी कुछ दिनों के लिए अपने इस आदत को छोड़ दें, खिड़कियां खुली रखें, दरवाजे खुले रखें, ताकि उसमें खूब ताजी हवा आती रहे, सूरज की रोशनी भी आती रहे। हाँ, रात को जरूर आप बंद कर लें, रात को खुले रखने का सवाल नहीं है, तो ओपन रखें, जितना भी खुलापन अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस खुलेपन को अपनाएं, क्योंकि अभी रिसर्च में ये बात आई है कि खुलेपन में, जहां खुलापन है वहां यह वायरस बहुत कम मार कर रहा है, और जो भिजी हुई जो बंद जगह है वहां इसका प्रकोप ज्यादा है। दोस्तों योगा के रूप में अभी जो अनुलोम और विलोम प्राणायाम है वह करने की मैं सलाह दूंगा। प्राणायाम के दूसरे रूप भी आप अपना सकते हैं, लेकिन जो अनुलोम विलोम है उसे आप जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, है ना। हम ऊपर हवा खींच करके सांस ऊपर लेकर के फिर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, और जब हम रोकते हैं तो वो जो सांस का प्रेशर है वो हमारे लंग्स पर पड़ता है, हमारे शरीर के सेल्स में जाता है, और उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो डेफिनेटली आप सबको यह योगा भी करना चाहिए। तो मैंने बहुत ही आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं दोस्तों, और मुझे लगता है कि हम सब इसे करके अपना जीवन भी बचा सकते हैं, दूसरों को भी बता करके उनके जीवन को बचाने में भी अपना योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नमस्कार।